किसी भी को सोचें, एक महीना हो गया डॉक्टर पे जा रहा है, दवा भी ला रहा है, खा भी रहा है, लेकिन फायदा नहीं हो रहा। जी
उसकी वजह ये है कि हम साथ परहेज नहीं, डॉक्टर ने
ठीक
बताया
है,
ये
एक
चीज़
वजह
है।
ये हो सकती है कि वो दवा तो खा रहा है लेकिन डॉक्टर जिन चीज़ों से रोक रहा है वो रुक नहीं रहा। और जी आप,
वो बीमारी जड़ पकड़ चुकी है।
बीमारी अंदर इतनी गहरी हो चुकी है कि दवा असर नहीं कर रही। ठीक है, उसके लिए इससे स्ट्रॉन्ग दवा की जरूरत है, ये कह रहे हैं।
सोचते हैं कि अगर खुद ही हम ठीक
यानी
हो
उसने
जाए।
दवा खरीदी तो है लेकिन खाई नहीं, ये भी वजह है। जी आप,
मैं भी यही सोच रही थी, हो सकता है दवाई चेंज करने की जरूरत हो।
दवा बदलने की जरूरत है। ठीक है, और जी आप, अम्मा जी पीछे। जी, अब आप देखिए कि ये सारी चीजें हैं ना, किसी के डॉक्टर की दवा खाने के बावजूद सेहत याब ना होने के। अब अल्लाह ताला कहते हैं, इन्न सलात तनहा अनिल फहशाई वल मुनकर। इमेजिनेशन में लाए कि एक शख्स है, उसको कोई बुराई है, कोई भी आदत है, नशे की आदत है, सिगरेट की आदत है, लड़कियों से बातें करने की आदत है, कोई लड़की है तो उसको बेहिजाबी की, कुछ भी आदत है। अब अल्लाह का फैसला क्या है कि ये नमाज उसको इससे रोक लेगी, लेकिन आप देखते हैं कि नमाज तो है पर रोक कोई नहीं है, तो वजह फिर क्या होगी? कि नमाज तो वो पढ़ रही है, पहली बात है कि उसके से परहेज नहीं है, दूसरी बात है कि यकीन भी नहीं है। आपको पता है कि जिस दवा पे यकीन ना हो वो बंदे को फायदा नहीं देती। तो जब आप और मैं उस तरीके से नमाजें पढ़ेंगे कि जिस तरह पढ़नी है, तो क्या फायदा होगा बताइए? नमाज किस चीज का इलाज है? सारी क्लास मिलके बोले ना ना ना, हम पढ़ क्या रहे हैं? हुब्बे नफ्स का इलाज है नमाज में। अपने पीछे पड़ जाएं कि मेरी ये नमाज मुझे मेरे नफ्स की मोहब्बत से, मेरी सेल्फ वर्शिप में, अपने सेल्फ नफ्स को पूछती हूँ, इससे निकालती है। चलिए ये बताइए कि दूसरी क्या बीमारी है जो इंसानी मामलात में बिगाड़ देती है? हुब्बे माल है। हुब्बे माल का इलाज क्या है? ज़कात है। ये बताइए कि ज़कात कैसे माल की हुब्स को दिल से निकालती है?
पैसे हमारे पास पैसे होते हैं, हमने लगाए जमा किए होते हैं, उनमें से हमें ज़कात देनी होती है, तो बड़े हौसले की बात होती है कि हमने अपने पैसों को यही इसी के लिए खर्च करना होता है।
देखिए, एक होते पैसे पड़े हुए एक थैली में, उसमें आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, नहीं चुभता किसी जगह। अगर बंदा खर्च करे उसको पता होता है कुछ दिन बाद इसमें पड़ भी जाएंगे। लेकिन जब एक थैली में पैसे रखे और आप उसमें से सिर्फ निकालें, सिर्फ निकालें, तो आपको एक दफ़ा ख्याल आएगा कुछ कम हो गए, दोबारा फौरन तीसरी चौथी बार क्या आएगा, अब तो ये सारे फिर ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि इसमें और नहीं डाल रहे। ज़कात का फलसफा क्या है? सेविंग्स, आने वाली इनकम पे नहीं, वो तो यहाँ के हिसाब किताब है ना कि आपकी इस इनकम पे टैक्स है, या आपका जो भी कोई कारोबार क्या है उसके अंदर गवर्नमेंट का कुछ हिस्सा है। इस्लाम क्या कहता है कि आपने माल जमा किया, पहली बात है कि एक साल एक माल आपके घर में पड़ा कब रहेगा? जब आपकी नज़र कमज़ोर है। किस बात में? कि आपको माल को इस्तेमाल करने की जगह ही नहीं नज़र आ रही, अपनी ज़ात पे, अपने रिश्तेदारों पे, अपने इर्द गिर्द पे, कहीं भी हर वक्त लोगों को माल की तो ज़रूरत होती है ना। देखिए, आप एक छोटा सा क्राइटेरियन समझ लें, वही बंदा अपनी तिजोरी में, अपने बैंक में, अपनी स्टेटमेंट्स में माल जमा रखेगा जिसको माल से मोहब्बत है। माल के आने में कोई हर्ज नहीं। एक शख्स को एक महीने में 10,000 मिलता है, दूसरे को एक महीने में 1 लाख मिलता है, तीसरे को एक महीने में 10 लाख मिलता है, कोई हर्ज की बात नहीं है। देखना क्या है, एंड ऑफ द मंथ स्टेटमेंट निकलवा के देखें कि जिसको ये 10,000 रुपया मिला उसके अकाउंट में क्या है, और वो 10,000 की कितनी ट्रांजेक्शन्स हुई। जिसको 1 लाख मिला एक महीने में, उसके एंड ऑफ द मंथ 1 लाख की क्या मसरफ के हैं, और जिसको 10 लाख मिले, हो सकता है कि जिसको 10,000 मिला उसके अकाउंट में 10 का 10 पूरे का पूरा पड़ा हुआ है, उसने वो भी नहीं खर्चा। और ये भी हो सकता है कि जिसको 1 लाख मिला था उसके पास 90 खर्च हो गए, 10 ही पड़ा हुआ है, वो उसके पहले के बराबर है। और तीसरा, जिसको 10 लाख मिला था उसके पास भी 10 ही रह गया, 1,000। फर्क किस चीज़ का है? आपने आए हुए माल के साथ किया गया। इस्लाम का जो नजरिया है ना, वो माल की रोटेशन है, माल को खर्च करो, इस्तेमाल करो। आप कहते नहीं, हौसला कहाँ पड़ता है कि हम अपना 10 लाख किसी को दे दें? ना दें, उधार दे दें। आप उस माल को किसी ऐसी जगह पे लगा दें कि जहां से आपको मिले। ये जो सीज्ड मनी होती है ना, इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। अकाउंटों में भरी पड़ी है, बैंक नफा खा रहे हैं। आप कहते हैं हमारा क्या जाता है, चलो जी हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे, ना ले इंटरेस्ट, लेकिन आपका 10 लाख बैंक में पड़ा हुआ है, वो हर महीने उस 10 लाख पे 10-15 हज़ार रुपये तो कमा ही रहे हैं ना, तो वो तो आपको नहीं मिल रहा। और इसके बरक्स आप देखते हैं आपके खानदान में कितने ऐसे गरीब भाई बहन है, रिश्तेदार है, कि जो रास के कम होने की वजह से कारोबार नहीं चला पा रहे, जो चलाते हैं करते हैं लेकिन पैसा कम है उनका, खत्म हो जाता है। कितने आपको दीन के काम दिखेंगे कि जो अगर आप लगा दें प्रोडक्ट में आपका कहीं नहीं जाएगा, लेकिन अगले को फायदा होता जाएगा, जब आपको जरूरत पड़े आप वापस ले लेते हैं। तो मुझे ये बताइए कि इसमें नुकसान किसका हुआ? माल से मोहब्बत नहीं करनी, आप कहें कि अल्लाह माल दे लेकिन माल से मोहब्बत ना दें, ठीक है? तो जब शऊर के साथ ज़कात दी जाती है, सदका दिया जाता है, तो चीज़ आती है। मैं जब ये बात आपको पढ़ा रही थी और बाद में भी मैंने सोचा ना, तो मुझे बनी इसराइल के बछड़े की कहानी याद आ रही थी। आप देखिए कि अल्लाह ताला ने उस बछड़े पे छुरी फिरवाई, ज़िबा करवाया, क्यों? कि इसकी मोहब्बत दिल से निकालने का तरीका यह है कि इनको इस पर छुरी फिरवाई जाए। अगर वो बछड़े पे छुरी फेर चुके पहली दफा, उनको बहुत नामुमकिन लगा होगा। जैसे आज भी जो लोग गाय का गोश्त नहीं खाते या गाय को मुहतरम समझते हैं, उनकी नज़र में गाय ज़िबा करना एक बहुत बड़ा फेल होगा। लेकिन अगर एक दफ़ा फेरेंगे, फिर एक महीने बाद फिर किसी गाय को ज़िबा करता हुआ देखें या फेरे, तीसरी दफ़ा उनको वो कोई इतना बड़ा मायूब काम नहीं लगेगा। बंदा जिस चीज़ पर छुरी फेर देता है ना, उसकी मोहब्बत दिल से निकल जाती है, सीधी सी बात है। इस्लाम कहता है कि माल की मोहब्बत पे छुरी फेर दो। हमारे बछड़े होते हैं ये, हम देख देख के खुश होते रहते हैं, निरा वबाले जान, चीज़ें जो आपकी इस्तेमाल नहीं होती, कपड़े जो आपके पहने नहीं जाते, जेवरात जो आप कभी इस्तेमाल नहीं करते, और पैसा जिसको आप किसी काम पे नहीं लगाते, बेकार है। हमेशा ये चीज़ें रख के कहें कि या तो ये मेरे लिए या किसी के लिए। अब आप कहते हैं किसी को उधार दे दें तो देता कौन है वापस, अच्छा कर्ज दे दें तो लोग चुकाते ही नहीं है, और रिश्तेदारों को तो एक दफ़ा दे के भूल ही जाओ। तो आप देखिए कि फिर इसके लिए लोगों को एजुकेट करें। मैंने अभी आने से पहले अटलांटा में एक बुक पढ़ाई थी, कर्ज के मसाइल, आप में से बहुत सारे लोग उससे फ़ायदा नहीं भी उठा सके मुझे पता है, लेकिन यकीन करें कि जब वो बुक हमने पढ़ी, 4 वीक में फ्राइडेज फ्राइडेज करके पढ़ी थी, तो उसके बाद मेरा दिल कर रहा था पाकिस्तान में एक एक छोटे से लेके बड़े कारोबारी को ये बुक पढ़ा दो। जिससे पूछो पैसे डूब गए, जिससे पूछो गुराई फंस गई, जिससे पूछो लोगों ने कर्ज लिया दिया नहीं, जिससे पूछो लोग लेते हैं देते नहीं। मैंने कहा अगर ये किताब की सीडी या रिकॉर्डिंग या बुक को पानी की तरह आम कर दें ना हम लोग, कितनों की डूबी हुई रकमें तर जाएंगी, क्योंकि वो आपने जो किसी का देना है वो कोई माल नहीं है, वो आग का अंगार है, चाहे आप अपने हाथ में रखें, वो सांप पर बिच्छू है। इस्लाम तो इसके ऊपर इतनी शिद्दत बरतता है कि अगर आप किसी ने आपसे लिया और वो आपको वापस नहीं कर रहा, तो क़यामत के दिन उसके साथ होने क्या वाला है। तो जब हम इल्म को आम करते हैं ना, तो आप देखिए कि लोगों के अंदर से ये चीज़ें निकल जाती हैं। आज हम असल में इल्म को छुपाने की सज़ा भुगत रहे हैं कि हर तरफ लोग, जिसकी लाठी उसकी बहन, जो जिधर अपना जोर लगा सकता है वो लगा लेता है। तो दो चीज़ें हमने देख ली, हुब्बे नफ्स का इलाज, बोलिए मेरा जुमला आदा है पूरा आप करेंगे, हुब्बे नफ्स का इलाज, हुब्बे माल का इलाज, तीसरी बीमारी क्या थी जिससे हमारे ताल्लुकात बिगड़ते हैं, झूठ। अब हम उसका इलाज पढ़ेंगे, और झूठ का इलाज क्या है, रोजा, ठीक है जी। आप सॉरी जी, बिल्कुल ठीक है, इसकी गुंजाइश है, इसकी गुंजाइश है, बिल्कुल कर सकता है। मसा आप हज करना चाहते हैं, आप कहते हैं चले 3-4 महीने पैसे जमा करते जाएं फिर हज कर लेंगे, इट्स ओके। आपको पाकिस्तान जाना है, आपको कोई भी नेक मकसद, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। लेकिन ये कि सिर्फ माल पर सांप बनकर बैठ जाना और उसको मजीद जमा करते जाना और किसी काम में ना आए, ये बेकार है। आप सवाब नूर गुना की बात ना करें, आपका नुकसान तो हो रहा है, मान लीजिए कि आपका नुकसान हो रहा है। आपके बैंक में 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है, पढ़ाई हुआ ना, पढ़ाई हुआ है, बच्चा तो नहीं वो देगा, सूद आपने लेना कोई नहीं है। आप कहते हैं हाँ जब कभी जरूरत पड़ गई 1 लाख रुपया निकाल लूंगी, आपको उस 1 लाख से 1 ही लाख मिला। लेकिन अगर आपका वो 2 साल तक पड़ा रहा बैंक में, या इधर उधर आपने छुपा दिया किसी गद्दे के अंदर या किसी रजाई के अंदर या किसी तकिए के नीचे, अब आप उसको ये सोचें कि ये डबल कैसे हो और ये ज्यादा कैसे हो। आपको पता है कि जब आप किसी को कर्ज देते हैं तो जितने दिन का वादा किया हो एक महीने का कर्जा है, एक महीना तक आपको हर रोज 1 लाख रुपया देने का अजर, एक महीने के बाद आपको नहीं मिलता वापस, कोई नहीं दे सकता, गरीब बहन भाई है या कोई नहीं बनता, वो कहता है 10 दिन और ठहर जाओ, हर दिन आपको उससे डबल का अजर है। जब ये हमने हदीसें उस बुक में पढ़ी, दिल करे हम लोगों को कर्ज दें और वो हमें कभी वापस ना करें, और क्यामत तक हमारे मल्टीपल होते जाए, मल्टीपल होते जाए। इतना बड़ा इंटरेस्ट तो दुनिया का कोई बैंक दे ही नहीं सकता जो अल्लाह सुबहान तला नफे की सूरत में देता है। जी आप कुछ ये गलत करते हैं, ये गलत करते हैं। देखिए कर्ज देने का अजर भी तभी है जब शरायत पूरी की जाए, ये भी याद कर ले। हम मुरव्वत में मारे जाते नहीं, अब लोग कहेंगे कि जी ये बात, और बाद में इसी बात पे फिक पड़ती है। आप सोच रहे होते हैं ये महीने में दे देगा, वो कहेगा मैंने तो 1 साल देना नहीं, और दूसरा कहेगा मेरा ख्याल था आपने लेना ही नहीं वापस। हमेशा देखिए आपस के ताल्लुकात बिगड़ते ही तब है। लिख ले, आप उन्हें कह के खाना पूरी है, आप इसको सवाब समझें, आप लिख लें, बल्कि थोड़ी मुद्दत लिखें ताकि आपका अजर जल्दी शुरू हो, डबल अजर हो, और उनको अल्लाह के कुरान की आयत दिखा दें। जब आपसे कोई कर्ज मांगे ना, तो साथ आप उसको कर्ज के मसाइल बुक भी दें कि आप इसको 3 दिन लगा के पढ़ें, मोटी मोटी हेडिंग्स पढ़ लें, आपको बुक समझ आ जाएगी। उन्हें कि आपको मैं कर्ज देती हूँ, ये बुक आप पढ़ लें, और 3 दिन के बाद बैठ के बात करते हैं कि आपने ये सब कुछ पढ़ लिया, इसके बाद आप वाकई इन चीज़ों पे अमल करेंगी तो मैं आपको दे देती हूँ। वो इसलिए कि पराया माल उसका लावारिस कौन होता है। देखिए हमारे यहाँ इतनी माली बेकायदगियाँ आप सोच नहीं सकते, माले मुफ्त दिले बेरहम। आप कहते हैं इसको कारोबार डाल देते हैं, 5 लाख लगा के दिया, साल बाद जाके पूछते, कहते वो तो खा पी गया, वो तो डूब गया। 5 लाख से आज के दौर में क्या होता है, या तो 5 करोड़ में काम होते हैं, आज इससे भी ज्यादा पे होते हैं। हाँ जी, तो हमेशा लोगों को एजुकेट करें। और अल्लाह के नबी के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि मैं जॉबलेस हूँ, या मेरे पास पैसा नहीं है, खाने को नहीं है, तो आपने उसको कुल्हाड़ी खरीद कर दी, कहा जाओ जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ। वो गया और जंगल की लकड़ियाँ लाया, कहा कोई इसे खरीदता है, लोगों ने उसे खरीदी, उसकी अच्छी खासी दिहाड़ी बन गई। कल कहा जाओ दूसरी जगह लाओ। असल बात यह, किसी को हुनर सिखा दें, किसी को पैसा देने की बजाय, वल्लाह ही ये तो मैं आपको फीस जमाना आज अपने हमारे मुल्कों के हालात पे कहूंगी, किसी के हाथ में पैसा देने की बजाय आप उसको कोई ऐसा हुनर सिखाएं। आप कहें अच्छा मैं करती हूँ, आप मेरे साथ करें, चले आपको मैं पैसा लगाती हूँ, आप मेहनत करें, आप हाथ में पैसा दें, तो फिर तो गया, आज तक आपको वापस नहीं मिला होगा, ना कभी मिलेगा, और आदत पड़ जाती है फिर। बस लोगों को तो फिर हर वक्त इसी की होती है, और गिले शिकवे अलग के तो बाहर बैठे हुए हैं, तो ये तो आप दे ही कुछ नहीं रहे, ले ही कुछ नहीं रहे, तो हमेशा दूसरों को भी गुनाहगार होने से बचाएं। जी आप देखिए, आपने किसी को कर्ज दिया, कोई आपको वापस नहीं करता, सिंपल सी बात है। आप अपने दिल में तो हमेशा से ये रखें, मैंने आपको किसी ने किसी को कर्ज दिया ना, आप अपने दिल में अल्लाह से कह दें कि अगर ये मुझे वापस ना करे ना, तो मैंने इसको दिल से माफ कर दिया। उसको ना कहिए बात फिलहाल, आप उसको स्ट्रगल करने दें, करने दें। अब वो कहता है कि जी मैंने देना है, जिस दिन आपने उसको कह दिया कि मैंने माफ कर दिया अब तुम मुझे ना दो, और वो कहता है कि मैंने देना है, आप फिर क्या करें, आप उससे वापस ले लें, उस माल को आगे किसी और को फिर कर्ज में दे दें। आपका पास एक नया अकाउंट बन गया कि ये पैसा मैंने आगे किसी खैर के काम में डालना है, किसी और को कर्ज दे दें, फिर उससे लें, फिर दें, तो फिर भी ठीक है इंशाल्लाह। नहीं, आपने उसको माफ करने की नियत की थी ना, लेकिन उसने आपने कहा कि नहीं मैं दूंगा, तो आप ले लीजिए, कोई हर्ज की बात नहीं है। ठीक है, नहीं फैमिली को कैसे पता लगता है आपने, मेरी फैमिली को तो नहीं पता मैंने किस किस को कर्ज दिया। मैं देखिए बात सुने, आप इन मामलात को सीक्रेट रखें, किसी को, बहन को, भाई को, चचा, ताया, पुप्पो, मामू, खाला, किसी के बच्चे, बच किसी को भी देते हैं, ये आपके और उसके बीच में राज हो, गवाह बना लीजिए अपने ही साथ, जिनको एक दो को खबर है, लोगों में ना बात करें, इससे और खराबियां पैदा होती, सारा खानदान उसको तोय तोय करता है कि तू कर्ज लेके पीछे हो गया, तूने उसका देना है, तूने लेना नहीं। यही तो हमारे सारे रोने हैं हर वक्त के, कारोबार शुरू करते हैं, बाद में गली गली बैठ के बातें करते हैं, चचा ताओं के बेटों को आपस में लड़ते देखें आप, कि जी कारोबार किया तो तुमने उनका दिया नहीं, तुम उनका हिसाब नहीं कर रहे, तुम खा गए उनके, वो कहते तुम्हें क्या पता वो तो इतना सुस्त था, यही कुछ रोते रहते हैं, और नमाजों से भी जोश चला जाता है। ठीक है, किसी और से बात हुई थी, तो मैंने उन्हें कहा कि कभी ऐसा होता है कि आप किसी को माफ कर देते हैं, किसी गरीब रिश्तेदार को दिया, अब आपको समझ आ रहा है कि वो दे नहीं सकता या वो देगा नहीं, आप अपने दिल में उसको माफ कर देते हैं लेकिन उसको नहीं बताते, तो क्या ये बेहतर है? तो उन्होंने फिर वो हदीस सुनाई थी जो पहले भी हमने सुनी हुई है कि हदीस में आता है कि जिसने अपने मुसलमान भाई के दिल में खुशी भरी, किसी के दिल में सुरूर भरना ये बहुत बड़ी नेकी है। तो उन्होंने कहा कि देखिए आपने तो नियत कर ली है तो आप उसको खुश कर दें। ये किस वक्त होगा? जब वाकई वो देना चाह रहा है और दे नहीं पा रहा, तो आप उसको उस गिल्ट से निकाल दें, तो ये एक आपके लिए एक प्लस नेकी हो जाएगी। एक तो कर्ज दिया, फिर माफ किया, फिर एक उसको खुश करने की नेकी है। हमारा ये हाल है कि ना भी लेना ना तो रोब जरा झाड़ी रखते हैं, बस बस ठीक है दे देना, यानी उसके साथ सीधे मुंह फिर बात भी नहीं करते। बाज़ अवल ऐसे मामला देखे गए हैं कि लेन देन में जरा सी लेना देना हो, फिर कोई चावत बुलाए और रहने तो हम नहीं खाते आपके घर, पहले कर्ज तो अदा करें। यानी इस तरह की नहीं आनी चाहिए, कभी भी अपनी नेकी को गुनाह ना बनाए। वो कहते हैं ना कि नेकी बर्बाद गुनाह लाजम, नेकी कर दरिया में कूद, ये बड़ों की बातें सच हैं कि बाज़ वक़्त नेकी करते करते हम गुनाहगार हो जाते हैं। तो अगर आप नेकी करके संभाल नहीं सकते ना, तो फिर आप ना करें। आप अपना हौसला भी तो देखें ना, आपका बर्तन कितना बड़ा है। आप एक को देखकर सारे कानों में लोगों को बताते फिर हैं, मैंने ये दिया, मैंने वो दिया, मैंने उसको दिया, तो हो सकता है कि वो दिया हुआ कम पड़ जाए और जो आपने अगले की बेइज्जती कर दी वो ज़्यादा हो जाए। ठीक है, बाज़ वो शादियों के मौके पे लोग लेन देन बड़ा करते हैं, इसको दे, ये मामू ने दिया, फूफो ने दिया, बाद में फिर सुनाते हैं घर घर, नानी के घर से आया तो ये मामू के घर से आया, तो वो जो लड़की जहेज की सूरत में चीज़ें ले गई तो वो सारे कहेंगे ये मांग तांग की तो तेरा जहेज बना है। तो जितना कम बोलेंगे और जितना आपको अल्लाह पे यकीन है ना कि ये मेरे अल्लाह को मैंने दिया है, उतना इंशाल्लाह आपको खुशी होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरी चीज पे, और वो चीज क्या है कि हम झूठ की खुराबी को रोजे के साथ कैसे पूरा करें। रोजे का मकसद अल्लाह ताला कुरान मजीद में इन अल्फाज में बयान फरमाते हैं, लअल्लकुम तत्तकून। किधर है ये? सूरत बकरा आयत 183। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। तुम पर रोजे इसलिए फर्ज किए गए ताकि तुम तकवा इख्तियार करो, तुम बच जाओ। यानी रोजा इंसान के अंदर तकवा पैदा करता है और मुत्तकी शख्स यकीनन झूठ कभी नहीं बोलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मल्लम यदा कौलस जूरी वल अमल बिही फलई सलिल्लाही हाजतुन अई यद तामहू व शराबहू। जिसने झूठा कलाम और इस पर अमल को नहीं छोड़ा तो अल्लाह ताला को इसकी भूख और प्यास की ज़रूरत नहीं है। यानी रोज़ा रखने का मकसद ये है कि झूठ बोलना छोड़ दो और झूठ के तकाज़ों पर अमल को छोड़ दो। अल्लाह ताला को तुम्हारी भूख और प्यास से कोई गरज नहीं। और इरशाद नबवी है, अस्सियामु जन्नतुन, रोज़ा ढाल है, मालम यहरिकहा, जब तक कि उसको फाड़ न दिया जाए। कीला मा यहरुकुहा, कौन सी चीज़ उसको फाड़ती है ढाल को? कालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लम ने फरमाया, अलकिज़्बु वलगीबतु, झूठ और गीबत। यानी रोज़ा जहन्नुम की आग से एक ढाल बन जाता है, लेकिन ढाल ही अगर टूटी हो, अंदर सुराख हो, कैसे बचेंगे? पूछा किस चीज़ से ये ढाल टूट जाती है, तो कहा झूठ और गीबत से। तो रोज़ा रख कर अगर झूठ बोलने हैं, झूठी चीज़ें देखनी सुननी हैं और गीबतें करते रहना है, तो फिर वो रोज़ा जहन्नुम की आग से ढाल नहीं बनेगा। रोज़े की असल ज़िद झूठ है। अगर किसी ने रोज़ा रख कर झूठ बोलना और झूठ के तकाजे पर अमल करना नहीं छोड़ा, तो इसके रोज़े का मकसद ही फौत हो जाता है। इसलिए कि रोज़ा इंसान को ज़िंदगी की सच्चाइयों और हकीकतों की जानिब मुतवज्जेह करता है। एक अमीर आदमी को रोज़ा रख कर इस सच्चाई का इतराफ होता है कि बेचारा गरीब इंसान किस तरह से ज़िंदगी गुजारता है। इसे एक मजदूर की ज़िंदगी का एहसास होता है कि ये भूखो प्यास और ये सर्दियों गर्मी हमसे एक महीना बर्दाश्त नहीं होती, और ये बेचारे सारी ज़िंदगी ऐसे हालात में गुजार देते हैं। दर्द तो पैदा होता है ना, और जब तक आप खुद रोज़ा ना रखें आपको रोज़ेदार की भूख का एहसास नहीं होता। और यही वजह है कि कुरान मजीद में रोज़े का जिक्र करने के बाद अल्लाह ताला ने रियायत इरशाद फरमाई, वला ताकुलु अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल वतुदलु बिहा इलल हुक्काम। अहले ईमान एक दूसरे के माल बातिल तरीके से ना खाओ और माल को हुक्काम की तरफ मत ले जाओ, यानी रिश्वत देने के लिए, ताकि तुम दूसरों के हकूक खा जाओ। सूरह बकरा आयत 188 है। यानी जहाँ रमज़ान का और दुआ का तस्करा है उसके फौरन बाद आए जब वो माले नाहक खाने भी हैं। अब समझ नहीं आता कि ये एकदम क्यों हो गया, तो बताया कि एक महीना हलाल से बचे हो ताकि तुम्हारे अंदर बाकी 11 महीने हराम से बचने की ताकत पैदा हो जाए। समझ गए? रोजे का मकसद हलाल से बचाकर हराम से बचने की ताकत दिलवाता है अल्लाह ताला। रोजे के फौरन बाद रिश्वत खोरी से मना करने का हुक्म आया है, बेईमानी और झूठ के तकाजे पर अमल करने से रोका गया है। और हकीकत है ना कि बंदा मोमिन का रोजा तो सारी जिंदगी का होता है, एक महीना जाहरी रोजा और 11 महीने मानवी रोजा। रोजा इंसान को झूठ से हटाकर अदल और अमानतदारी की तरफ ले आता है। मुनाफिक की चार अलामात बयान की गई, इजा हद्दसा कजिब, जब बात करे तो झूठ बोले, इजा तुमीना खाना, जब अमानतदार बनाया जाए तो खयानत कर दे, व इजा अहदा इनकदा, जब अहद किया जाए तो तोड़ दे, व इजा खासमा, और जब झगड़ा हो फजर तो वो झगड़े में आ जाए, यानी लड़ाई हो तो झगड़े पे गाली गलोच पे आ जाए। जिस शख्स में ये चारों अलामतें पाई जाएं वो मुनाफिक, और जिसमें चारों में से तीन हो वो 75% यानी 75% मुनाफिक, और जिसमें दो हो वो 50%, और जिसमें एक हो वो 25% मुनाफिक होता है। अल्लाह के नबी सल्लम के बारे में कुरान मजीद में है, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, मैं तुम्हारी तरफ बतौर अमानतदार रसूल बना के भेजा गया हूँ। मोमिनीन की सिफात के बारे में फरमाया, वल्लज़ी नहुम लि अमानाती हैं वहदीम राउन, वो बेशक वो लोग हैं जो अपनी अमानतों और अहदो पैमान की हिफाजत करने वाले हैं, राउन यानी रियायत करने वाले हैं, टेक केयरर हैं, ख्याल रखते हैं उसका। वह फरमाया, तम्मत कलीमत और रब्बी का सिदकम व अदला, सूरत अलनाम की आयत है ये, कि तुम्हारे रब का कलाम सिदक और अदल के लिहाज से अपनी मेराज को पहुँच गया। और फरमाया, व इन्नल्लाह यामुर बिल अदली वल एहसानी व ईताए ज़िल क़ुरबा, सूरह नहल की आयत है, कि अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि अदल करने, एहसान करने और रिश्तेदारों को देने का। तो सारी बात का खुलासा क्या है? रोज़ा ज़ब्ते नफ़्स सिखाता है, रोज़े से इंसान झूठ से निकल आता है। आप फील करते हैं कि रोज़े के दौरान एक अजीब सी नकाहत का एहसास होता है, कमज़ोरी का एहसास होता है। हम ये सोच रहे होते हैं कि ये खाना ना खाने की वजह से, बस लोग सोच रहे होते हैं कि ये ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से, कोई कहता है शुगर लेवल लो होने की वजह से, वो सब भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि रोज़ा रखने से आपकी रूहानियत जागती है। आप रोज़ा नहीं रखते ना, आपको मुश्किल लगेगा। कोई दूसरा रोज़ा रखे, आप कहते इतना लंबा रोज़ा, फिर अगर सहरी भी ना खाए कि इतनी जल्दी खाने को दिल नहीं करा, आप कहते हैं 24 आवर से भी ज़्यादा का रोज़ा। यकीन करके देखें, आप खुद रोज़ा रख के देखें, आप कहते इतना मुश्किल तो नहीं है। यानी अगर आप सोचें ना कि चले ऐसा करते हैं कि इस मंडे को हम सब रोज़ा रखते हैं, तो हम में से आधों को आसान लगेगा, आधों को मुश्किल लगेगा, आधे कहेंगे इट्स ओके। लेकिन जब आप मंडे को सारे रोज़ा रखेंगे ना, तो आप में से जो सोच रहे थे मुश्किल लगेगा, उनको कोई नहीं लगेगा। ये फितरी बात है। क्यों? रोज़ा रखने से आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी आ जाती है, बर्दाश्त पैदा होती है। फिर आप कहते हैं सारा दिन क्यों मुझे खाने का ध्यान लगा रहता है, आज तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया, आज तो देखो ऐसे ही है। और आप नोट करेंगे, रोज़ा ना हो और कुछ ना खाया हो, थोड़ी थोड़ी देर बाद आप कहेंगे आज कुछ नहीं खाया, सर में दर्द होने लगी है, ये ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, चक्कर आ जाएंगे। अच्छा, रोज़ा रखा हो तो जहनी में कुछ नहीं आता, क्योंकि आपको पता है कि आपको खाना ही नहीं था। तो ये चीज़ें इंसान में बर्दाश्त पैदा करती हैं। रमज़ान तो करीब ही है ना, दूर तो नहीं लग रहा, हमेशा ही करीब होता है, लेकिन आज आप देखिए कि 28th है ना, इंशाल्लाह अल्लाह का हुक्म हुआ जिंदगी रही तो 28th को ही हमारा इस्तकबाल रमज़ान है। इस साल का मेन रमज़ान जो होगा, दो प्रोग्राम होंगे, एक 28th को होगा, एक 29th को होगा, और इंशाल्लाह 30th से फिर हम अपना रमज़ान का स्पेशल प्रोग्राम शुरू करेंगे। ऐसे लग रहा है कि अब तो उंगलियों पर दिन गिने जा रहे हैं और पता भी नहीं चलेगा इस मई का। आप जितना इस मई के महीने को अच्छा यूटिलाइज कर ले, अपने कामों को निपटाएं, अपनी घरदारियों को समेटें, फालतू कपड़े समेटें, ज्यादा इस्त्री वाली चीजें हटा दें, आप इसे एक महीने में अपने घर को इतना लाइट कर ले, टाइडी कर ले, कि आपको फिर रमजान से भरपूर फायदा उठाने का मौका मिले। फालतू चीजें ही हैं जो हमारा वक्त लेती हैं, आप माने ना माने। मुझे एक सिस्टर की बात याद आ गई, उनके घर 2 फ्लोर का अमेरिका में जैसे घर होते हैं, बड़ा सा घर था, तो उसने जब ये बातें सुनी तो बाद में कहा कि हम लोगों ने ये किया कि हमारे घर में सोने के कमरे ऊपर हैं और किचन और जो स्तूवे आप जिसको कहते हैं वो नीचे, अमेरिका में मोस्टली ऐसे ही हैं घर, इसी तरह दूसरे। तो उन्होंने कहा कि आप जिसमें मेरा फिर पूरा घर गंदा होता है, सोते ऊपर है, बैठते नीचे थे, नीचे एक मास्टर बेड होता है, बाकी कमरे ऊपर है। तो उन्होंने क्या प्लान किया कि चले इस साल ये करते हैं कि रमज़ान में हम ऊपर का हिस्सा साफ़ सुथरा करके उसको बंद कर देते हैं और कमरे और में जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो नीचे के कमरे को यूज़ करते हैं। कहने लगी हमें इतना उससे फ़ायदा होगा, पहली बात है कि सिर्फ मेरे पास हम नीचे का घर होता था और खाना पकाना वहीं खाना उधर ही रहना, बच्चे भी करीब आ गए, तो हमने इतना ज़्यादा इंजॉय किया कि आधा घर था, सफाई भी आसान थी, बच्चों को उठाना भी आसान लगे, सर्विंग भी आसान लग रही और हम सब नीचे सो रहे थे एक जगह पे और ज़्यादा वक्त हमारा जो था वो किसी ना किसी मुसबत चीज़ में जा रहा था। तो फिर उनको एहसास हुआ कि जितना बड़ा घर और 2-3 फ्लोर होते हैं वो उतना ही बंदा फैलता है और दिमाग भी फैलता है, आप माने ना माने आपकी सोच बिखर जाती है, वो कमरा ठीक करने वाले, अब उधर के पर्दे, अब उधर का बाथरूम, अब उधर की चीज़ें, तो जितना ज़िंदगी का सिलसिला फैलता जाता है उतनी हमारी सोच बिखरती जाती है। तो इंशाल्लाह हमने इस साल बहुत अच्छी अच्छी नियतें करके इरादे करने हैं, आप मैं अभी से इस काम में जुट जाएं, जिस जिस तक हम अपने रमज़ान के पैगाम को भेज सकते हैं, जहाँ तक लोगों की राइड का इंतज़ाम कर ले, अपनी अपनी गाड़ियों को भर के लाने की बात करें कि हमने इस दफ़ा के रमज़ान को वाकई अपनी ज़िंदगी का दी बेस्ट रमज़ान बनाना है, शायद हमारे पास इसके बाद मौका ना हो, अभी तो ये भी नहीं पता कि इस साल भी मौका मिले ना मिले, लेकिन होप फॉर दी बेस्ट। तो इंशाल्लाह हम इस साल के फिर रमज़ान को ख़ास तौर पर नफ्स की तीसरी बुराई झूठ से बचाएंगे। आज से नियत करें झूठ नहीं बोलना, ज़िंदगी से झूठ को निकाल दें, झूठा तकल्लुफ निकाल दें, झूठी मोहब्बत के दावे निकाल दें, खुशामत भी झूठ है, झूठे लाड देखना भी झूठ है, किसी से मोहब्बत कोई नहीं कहना आई लव यू ये भी झूठ है, किसी से झूठी हमदर्दी का इजहार करना बड़ा अफसोस हुआ आपको हर वक्त याद करते रहे ये भी झूठ है। आप देखिए हम अक्सर औकात रिश्तों को खुश करने के लिए झूठ बोलते रहते हैं, अच्छा लग रहा है तो कह दे, नहीं लग रहा तो चुप रहे, खामखा एग्जैजरेट करना, और कई वजूहात हैं इस पर हमने अलग से बात की भी है, कुरान की किरने में एक लेक्चर है जो आयत नंबर 8 से 20 तक सूरह बकरा को, उसमें झूठ पे बड़ी डिटेल से बात हुई है। तो हम सबको खुरच खुरच कर अपनी ज़िंदगी से झूठ निकालना है, आप फील करेंगे आपकी ज़िंदगी से झूठ निकल गया आपके इंसानी मामलात अच्छे होंगे। आप नोट करें शौहर बीवी के बीच में झूठ कब आता है, झूठ ही उनके ताल्लुकात को बिगाड़ता है, आप कह लें मैंने झूठ नहीं बोलना, शौहर के बीवी से मैंने झूठ नहीं बोलना, बीवी शौहर से कहती आज के बाद मैंने आपसे झूठ नहीं बोलना, आप देखेंगे जाहिर आपको मुश्किल लगेगा लेकिन थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद आपके ताल्लुका ठीक हो जाएंगे, आप वो काम करेंगे नहीं जो बता नहीं सकते, क्योंकि पहले तो आप झूठ कह देते थे अब झूठ नहीं बोलना, इसी तरह वो भी आपसे कोई ऐसी उल्टी सीधी बात नहीं करेंगे, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि झूठे लारे ख़त्म, झूठी उम्मीदें ख़त्म, झूठ झूठ जो आपकी मेरी ज़िंदगी में रचा बसा हुआ है उसको निकालेंगे ना तो हमें एकदम सेहत का एहसास होगा, सच की बुनियाद पे ज़िंदगी को इंशाल्लाह शुरू करेंगे। कोई बात इससे मुतल्लिक आपके जहन में है, क्योंकि यहाँ हमने वो 3 किस्म की खराबियाँ पूरी कर ली, अब अगला टॉपिक बड़ा खूबसूरत है कि हम अच्छे वसफ क्या पैदा करें, उससे पहले अगर आप चाहें कुछ पूछना या बताना तो पूछ सकते हैं। जी आप नसीम जी, जी बहुत अच्छा सवाल है। आप देखिए कि झूठ की गुंजाइश जिन जगहों पे उनमें से एक है कि 2 भाइयों में सुलह कराना या शौहर बीवी में सुलह कराना, बिल्कुल झूठ बोल सकते हैं, एग्जैजरेट करेंगे ना तो अगला खुद भी नहीं यकीन करेगा। मसलन अगर आप देखें कि शौहर बीवी हैं, बीवी जुदा होकर माँ बाप के घर बैठी हुई है, शौहर बड़े गुस्से में है, अब आप बीच में थर्ड पर्सन है, कोई दोस्ती है या कोई भी रिश्तेदारी का मामला है, आप क्या करें, दोनों के पास मिलें, बीवी से मिलें, अच्छा जब वो उससे बात करें ना तो वो 10 बातें तो मियाँ के खिलाफ करेगी ना, लेकिन कहीं ना कहीं बातों में वो कोई एक अच्छी भी बात कर देगी, हाँ ये सब है लेकिन यह है कि इसके बावजूद उनकी ये आदत बड़ी अच्छी है, बस आप वो लिख लें। अब वहाँ से उठें जब तो आप मर्द के पास जाते हैं, उधर आप लोग काउंसलिंग करते हैं तो आप उनसे बातें, वो बड़े गुस्से में लगते हैं, ये है वो है, आप क्या करें, वो जो 10 उसने उसके बारे में गलत बातें कही थी ना वो चुप कर जाए, लेकिन वो जो 1 सच बोला था ना, था सच लेकिन बोला उसने, आप उसको एलैबोरेट कर सकते हैं, अच्छा वो तो आपके बारे में बहुत अच्छा कह रही थी, या वो तो फील कर रही है, वो तो आपको मिस कर रही है, या वो तो थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस कर रही है, उस पॉइंट को फिर एलैबोरेट करने में सच बोल दें, इसको तो लोग मान लेंगे, लेकिन अब आप ये तो नहीं कह सकते ना कि वहाँ जाके अगर किसी ने आपको 10 बुराइयाँ कही और कोई एक अच्छी बात की और उधर जाके आप कहते हैं वो तो आपकी सिर्फ तारीफें ही कर रही थी, वो तो खुद भी नहीं मानेगा, ठीक है। तो जोड़ने की बातें करें और याद रखें आपकी ज़िंदगी, चाहे आप एक सास हैं और आप 4 बहुओं से डील कर रहे हैं, आप एक मैनेजमेंट पर्सन हैं और आप 10 टीम मेंबर से बात करें, एक कान से लोगों की बात सुने, आपके पास कोई आता है वो कहता है मुझे दूसरे साथी से ये शिकवा है, पूरी बात सुने, वल्लाह ही पूरी बात उसकी सुने, ताकि वो तो पहले खाली हो ना, फिर उसके बाद आप उसको कहें कि ठीक है आपकी बात सुनी है, और जहाँ जहाँ आपको फील हो कि वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव हैं या एक्स्ट्रा फील कर रहे हैं या लोगों की मजबूरी नहीं समझ रहे, आप उनकी तसल्ली कर दें, ये हो गया वो हो गया, और उनको तसल्ली दे। वैसे फिर अगर पर्सनल कोई मैटर हो तो आपके, वैसे मेरे साथ कभी उन्होंने आपकी कभी बात नहीं की, आज तक मैंने नहीं कभी उनके मुंह से आपकी सुनी, मुझे लगता है आपको उनसे कोई गलत फहमी है। अब जब अगले बंदे को आप बीच में पड़े, कभी भी उनसे डील करने, कभी भी किसी बंदे को लफ्ज़ ब लफ्ज़ न सुनाएं कि वो आपके बारे में ये कह रही थी, ये जिंदगी का असूल बना लें कि मट्टी डाल दें। और ये हम औरतों के लिए इतना मुश्किल है, हम पहले नहीं बताते, उस वक्त नहीं बताते, क्योंकि अगले ने कहा होता है बाप बाजी आगे ना बताइएगा, खाला आगे ना बताइएगा, पुप्पो अब आगे ना बताइएगा। अच्छा पुप्पो एक दिन तो सब्र करती रहेंगी, नहीं बताएंगी, पर वो कब तक का सब्र है? अगले दिन जब वो दूसरे ने उसको लेके बैठना है ना, अच्छा जब उसने बात करनी है ना, तो हमारी साइड उसकी तरफ हो जाती है, फिर कहेंगे अच्छा वैसे वो तो कल मेरे साथ आपके बारे में ये बातें कर रही थी। मैं कहती हूँ पहाड़ जैसा दिल, बर्तन बड़ा सा ड्रम बना लें अपने दिल को, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। अभी तक तो नेगेटिव पढ़ी है ना, क्योंकि मैं आज बहुत सोच रही थी इसी बात को कि दुनिया की सबसे कीमती चीज़ से हम गाफिल हैं। हमारे पास माल होता है हम कहते हैं हम बहुत पैसे वाले हैं, हमारे पास जेवर होता है हम कहते हैं बहुत आसूद हैं, घर बड़ा होता है हम कहते हैं बड़े खुशकिस्मत हैं, लेकिन जो अखलाक, जो वसफ, जो मेरे अंदर खूबियां आएंगी तो मेरी अपनी भी जिंदगी खूबसूरत होगी, हम बाज दफा उससे गाफिल होते हैं। इस वक्त आप और मैं अपने आप को बिल्कुल इस तरह से लेंगे कि मैंने अपने आप को एक्सपोज करना है। तो इंशाल्लाह ये जो अगला टॉपिक है मैं इसको शुरू करती हूँ, और फिर इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आएंगी, मुझे यकीन है कि इसको हम इन डेप्थ करेंगे और अल्लाह ताला हमारे लिए इसको आसान कर दे इंशाल्लाह।